चलिए रुकू नंबर 25, 211, 211 से 216 तक। टॉपिक लिखिए, जन्नत सिर्फ ख्यालात से नहीं आमाल से मिलती है। इसका एक आसान टॉपिक दूं, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। सल बनी इसराइल कमाते ना हो मिन आयतिम बेजीना। बनी इसराइल से पूछो कि हमने इन्हें किस कदर रोशन निशानियां अता फरमाई, और जो शख्स अल्लाह की नेमतों को अपने पास पहुंच जाने के बाद भी बदल डाले, वो जान ले कि अल्लाह ताला भी सख्त अजाबों वाला है। काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी खूबसूरत बना दी गई, दुनिया की जिंदगी खूब जीनतदार बना दी गई, वो ईमान वालों से हंसी मजाक करते हैं, हालांकि परहेजगार लोग क्यामत के दिन इनसे आला होंगे। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। अल्लाह हमें भी समझ दे दे। दरअसल लोग एक ही गिरोह थे, अल्लाह ने नबियों को खुशखबरियां देने वाला और डराने वाला बनाकर भेज दिया, और इनके साथ सच्ची किताबें नाजिल फरमाई ताकि लोगों के हर इख्तलाफी अमर का फैसला हो जाए। और सिर्फ इन्हीं लोगों ने जो इसे दिए गए थे, अपने पास दलाइल आ चुकने के बाद आपस के बुग़्ज़ और इनाद की वजह से इसमें इख्तलाफ किया। इसलिए अल्लाह ताला ने ईमान वालों की इस इख्तलाफ में भी हक की तरफ अपनी मशीयत यानी अपनी चाहत से रहबरी की, और अल्लाह ताला जिसको चाहे सीधी राह की तरफ रहनुमाई करता है। अम हसीब तुम, आप जरा सा दिल पे लीजिए, अम हसीब तुम अंतदुल जन्ना, क्या तुमने ये गुमान किया है कि तुम जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अभी तक तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे पहले लोगों पर आए थे। इन्हें बीमारियां और मुसीबतें पहुंची, वो यहाँ तक कि वो झंझोड़े गए। जुलजिलु जिलजालन शदीदा, जलजला नहीं होता वो लफ्ज़, बिल्कुल वही है। क्यों के रसूल और इसके साथ के ईमान वाले कहने लगे कि मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? सुन लो अला, सुन लो क्या, नसरुल्ला ही करीब। कह दो कि अल्लाह की मदद तो करीब है। यहाँ रुकिए, यह है नसरु मिन अल्लाह ही व फतहुन करीब। नबियों की जिंदगी में भी अल्लाह का यही असूल था, आज भी यही असूल है। अल्लाह की मदद है ईमान वालों के साथ, मगर मशरूत, कंडीशनल है। तुम ये काम करो, मैं वो करूँगा, तुम अपना हिस्से का काम कर लो, मैं अपने हिस्से का कर दूंगा। देखिए, इम्प्लॉय काम कर ले तो जो इम्प्लॉयर है उसके जिम्मे बन जाता है उसको पे देना, तो जो इम्प्लॉय काम नहीं करता वो एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे पे मिलेगी, बस उसी को समझ लीजिए। आपसे पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें, आप कह दीजिए जो माल तुम खर्च करो वो माँ बाप के लिए है और रिश्तेदारों और यतीमों और मिसकीनों और मुसाफिरों के लिए है, और तुम जो कुछ भी भलाई करोगे अल्लाह को इसका इल्म है। तुम पर जिहाद फर्ज किया गया। रुकिए जरा इस आयत पे, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, है किसी तफसीर की ज़रूरत इसके लिए? मेरे जैसी ज़ुबान की ज़रूरत है इसको बताने में कि इस्लाम में जिहाद का क्या मुकाम है? कुतिबा फुरीदा, अभी आपने बड़ा कुतिबा अलैकुम अस्सलाम, इकसामे बिर में अल्लाह बता रहे हैं उम्मते मुस्लिमा पे जिहाद फ़र्ज़ किया गया, हालांकि वो तुम्हें दुश्वार मालूम होता है। आज वेस्ट कहते हैं मुसलमान खून के प्यासे हैं, कुरान कह रहा है तुम्हें नहीं अच्छा लगता जिहाद करना, पर तुम पर फ़र्ज़ है। कब? जब लोग तुम्हारी जान, तुम्हारी माल, तुम्हारी नस्लें सब कुछ लेने के दर पे हैं, और तुम सिर्फ अपने आप से जिहाद कर रहे हो कि मेरी कोठी बड़ी हो जाए और मेरी गाड़ी बड़ी हो जाए और मेरे पर्दे अपग्रेड हो जाए, तो फिर जो होगा वो हो रहा है, फिर रोने की ज़रूरत क्या है? फिर तुम देख लो तुम कर क्या रहे हो। मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को बुरी जानो और दरअसल वही तुम्हारे लिए भली हो। इसका ताल्लुक सिर्फ जिहाद से नहीं है, फितरत की बात है, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती ना वो अच्छी होती है। जैसे नसीहत, दवाई कड़वी लगती है। अल्लाह ने आपको मुझे मेहनत का हुक्म दिया, हम नहीं करते तो हमें तो बुरा लग रहा है लेकिन उसका फ़ायदा होगा। डाइटिंग अच्छी नहीं लगती लेकिन फ़ायदा है, हमें फाइटिंग अच्छी लगती है उसका नुकसान है। तो ज़रूरत इस बात की कि अल्लाह के बताए हुए मेयार के मुताबिक दीन को देखोगे, तुम्हें सारी बातों की हकीकत समझ में आ जाएगी, हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो। कौन सी? जिसको तुम अच्छा समझ रहे हो। हकीकी इल्म तो अल्लाह ही को है और तुम महज बेखबर हो। तो इस रुकू 25 में तीन आयतें ईमान से मुतल्लिक हैं, नोट कर लीजिए। 212, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्ख़रून मिनल्लज़ीना आमनू। इस पे एक कोड लिखिए, कुछ लोग जन्नत को ढूंढते हैं, माशाल्लाह आप जैसे मेरे जैसे कोशिश कर रहे हैं ना जन्नत मिले, और कुछ लोगों को जन्नत ढूंढती है, अल्लाह में वो बना दे। आपको तो जन्नत किन को ढूंढती है? जो तौहीद की बुलंदियों पे होते हैं। जो हकीकत में अल्लाह को पा कर फिर उसका हक अदा करने की कोशिशों में ज़िंदगियाँ खपाते हैं, जो अपना नफ्स अल्लाह के लिए बेच देते हैं। वमिन अन्नास में यशरी नफ्स उब्तिगा मरदातिल्लाह, यानी जिनकी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, जो सुबह रात शाम एक ही बात कहते हैं, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। ये हमारी नमाज रोज़ा टूल है किस काम का, के कुन तुम खैर उम्मत अखरिजत लिन्नास। आज उम्मत को ये भूला हुआ सबक याद दिला दिया जाए तो फिर देखिए ये दुनिया में वर्ल्ड लीडर बनकर पूरी दुनिया में इज्जत पाएंगे। आज हम तो बेइज्जत हुए हैं ना, और फिर जो दिल करता है लोग हमें बातें करते हैं। फिर अगली आयत देखिए 213, फहदल्लाहुल्लज़ीना आमनू लिमख्तलिफू फीही मिनल हक्की बिइज़्निही। इसका टॉपिक इसके अंदर लिख लीजिए, इख्तलाफ हो सकता है, मुखालफत नहीं। देखिए इख्तलाफ के, कुछ गाड़ियां ईस्ट टू वेस्ट जा रही हैं तो दूसरी गाड़ियां वेस्ट टू ईस्ट जा रही हैं, सारा दिन रोड्स पे ये हो रहा है। मुखालफत क्या है, इधर से आने वाली गाड़ी उसमें टकराने लगे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। आयत 214 में देखिए, हत्ता यकूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू माहू मता नसरुल्लाह। अल्लाह पर नजरें लगाएं तो अल्लाह मायूस नहीं करता, अल्लाह हमें अपने काम करने वाला बना दे। आगे जी रुकू नंबर 26, 26, 217 से 221, 217 टू 21। टॉपिक लिखिए, अल्लाह की राह से रोकना और कुफर करना जुर्मे अजीम। यसअलूनका निश्शहरिल हराम, लोग आपसे हुरमत वाले महीनों में लड़ाई के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि इनमें लड़ाई करना सख्त गुनाह है, लेकिन अल्लाह की राह से रोकना, इसके साथ कुफर करना और मस्जिद हराम से रोकना और वहाँ के रहने वालों को वहाँ से निकालना, अल्लाह के नज़दीक इससे भी बड़ा गुनाह है। यानी उन्होंने एक सवाल उठाया, अल्लाह ने चार जवाब दिए कि जो तुम कर बैठे हो तुम्हें इसका नहीं पता। मक्का वालों, तुमने नबी को निकाला, तुमने उन परसिक्वेशन की, तुमने बिलाल को कांटों पर लटाया, तो अब तुम इतने सवाल करते हुए अच्छे नहीं लग रहे। आज भी यही सवाल जवाब उन लोगों के लिए है जिनको इस्लाम बर्बेरिक लगता है। फरमाए, ये फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है, ये लोग तुमसे लड़ाई भड़ाई करते ही रहेंगे, यहाँ तक कि अगर इनसे हो सके तो तुम्हें तुम्हारे दीन से मुर्तद कर दें, और तुम में से जो लोग अपने दीन से पलट जाएं और इसी कुफर की हालत में मरें, इनके अमाल दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी के सब गारत हो जाएंगे। ये लोग जहन्नमी होंगे और हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। इसके बरक्स अलबत्ता ईमान लाने वाले, हिजरत करने वाले, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले ही रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबानी करने वाला है। अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल कर ले। अच्छी सी दुआ मांगे अपने लिए कि अल्लाह ईमान की बुलंदियाँ अता फरमा। अब एग्जाम बिर में कुछ नेगेटिव चीज़ों की भी बात है कि दीन क्या है और किन चीज़ों से रोकता है। उसमें सबसे पहले शराब और जुआ। यसअलूना का, लोग आपसे शराब और जुए का मसला पूछते हैं, आप कह दीजिए कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों को इससे दुनियावी फ़ायदा भी होता है, लेकिन इनका गुनाह इनके नफ़े से बहुत ज़्यादा है। आपसे ये भी दरियाफ्त करते हैं कि क्या कुछ खर्च करें, तो आप कह दीजिए हाजत से ज़्यादा चीज़। अल्लाह ताला इसी तरह अपने अहकाम साफ साफ तुम्हारे लिए बयान करता है ताकि तुम सोच समझ सको दुनिया के कामों को भी और दीन के कामों को भी। और आपसे यतीमों के बारे में भी सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि इनकी खैरख्वाही बेहतर है, तुम अगर इनका माल अपने माल में मिला भी लो तो तुम्हारे भाई हैं। बदनीयत और नेक नीयत हर एक को अल्लाह खूब जानता है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुशक्कत में डाल देता, यकीनन अल्लाह ताला गलबे वाला और हिकमत वाला है। अब यहाँ से आगे, यानी इतनी बातों में से आगे 221 से ऑनवर्ड खवातीन और घरेलू ज़िंदगी के मसाइल हैं। इनको आप आयली कवानीन कह सकते हैं, आप इनको सोशल थिंग्स कह सकते हैं, और शादी ब्याह निकाह इवन औरतों की बीमारी के दिनों की बातें हैं, क्योंकि यहाँ से तलाक इद्दत और ये सब शुरू हो रहा है। यानी अब आपको आगे पता क्या लगेगा, वो जिसको कहते हैं ना घरेलू कहानी सुन रहे हैं, और मैं हैरान होती हूँ कि इस कुरान को लोगों ने आज तक पढ़ा ही नहीं। ज़रा सुनिएगा, और वेस्ट में रहने वाले पेरेंट्स के लिए ये आयत ज़रा सा कान खोल कर सुनने वाली है। फरमाया, और शिर्क करने वाली औरतों से यहाँ तक कि वो ईमान ना ले आए तुम निकाह ना करो। यानी कोई मर्द अपना निकाह किसी मुशरिक औरत से ना करे, कोई माँ अपने बेटे का निकाह किसी मुशरिका से ना करे और बाकी भी चीजें, क्योंकि ईमानदार लौंडी भी शिर्क करने वाली आजाद औरत से बेहतर है। गो तुम्हें मुशरिका ही अच्छी लगती हो, और ना शिर्क करने वाले मर्दों के निकाह में अपनी औरतों को दो जब तक कि वो ईमान न लाएं। ईमानदार गुलाम आजाद मुशरिक से बेहतर है, गो मुशरिक तुम्हें अच्छा लगे। ये लोग जहन्नुम की तरफ बुलाते हैं। यह वजह भी बता दी, क्यों ना करो। तुम चाहते तुम्हारा बेटा आग में जाए, तुम चाहते तुम्हारी बेटी आग में जाए, तो जाहिर बात है कि आग को पूजने वाले के साथ रहेगा तो उसको क्या चीज़ समझ आएगी। यानी ये बहुत अहम आयत है, और इन आयतों की तफसीर आप ज़रूर इनको लिंक भेजिए, कई सेट्स हैं, बहुत खुल के इस पे बात होती है। और आज वैस के अंदर कहानी घर घर की। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 23 साल हो गए यूएसए में आए हुए। मैंने सीधा सीधा हिसाब 2000 का रखा हुआ है, रफली अबाउट कहती हूँ। वो 23 साल पहले से लेके आज का काम यही है, अल्हम्दुलिल्लाह, फोकस्ड ऑन माई जॉब, अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक़्त जो लोगों के सवाल आते थे उसमें, और आज 2024 के जनवरी फरवरी मार्च में जो सवाल हैं, ज़मीन आसमान तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि ग्रे और ब्लैक का फ़र्क आ गया। कार्ड दे रहे हैं पेरेंट्स, वो बेटे की शादी है, ये मेहंदी है, ये उबटन है, ये है, बेटी की शादी, अच्छा किधर हो रही, जाके देखा तो वो नॉन मुस्लिम लड़का था। नहीं भी शादी तो मैं करनी पड़ती, तो कर दो, ये मेहंदी क्यों कर रही। नहीं, खानदान को क्या कहेंगे, बिरादरी को क्या कहेंगे। यानी आज ये टॉपिक कितना पोल्यूटेड है, इतना है कि मुझे घिन आती है, जख्म में से घिन आती है ना। याद रखिए, शादी खाना आबादी, नॉट शादी खाना बर्बादी। हर 3 में से एक या दो घर टूट रहा है, जो साथ भी रह रहे हैं वो भी शायद किसी मजबूरी पर रह रहे हैं। आज मुस्लिम और नॉन मुस्लिम शादियां उस असिमिलेशन का नतीजा है जो इंटरमिंगल होने के नाम पे बच्चों को हर चीज़ में डाल दिया। नहीं फिर बच्चे पीछे रहेंगे, वो उसको क्या कहते हैं आप लोग, फियर ऑफ लीविंग बिहाइंड। सही बोला मैंने, फोमो। ये देखे ना, इल्म वाले बैठे हैं जी, ये नई टर्म है, बाहर वाले भी सुन ले, पाकिस्तान वाले, इंडिया वाले, कभी नहीं सुनी होगी। योलो तो अभी आपको लेक्चर्स में एक में दिए, यू लिव ओनली वंस, ये आज का स्लोगन है। और क्या है, फोमो, हाय हम पीछे ना रह जाए, जन्नत की बस मिस होती है तो हो जाए, जन्नत की ट्रेन मिस हुई, जन्नत की फ्लाइट मिस हुई, होने दो, लोग हमें ना पीछे करें, तो नतायज वही होंगे जो कुरान बता रहा है कि वो तुम्हें आग की तरफ बुलाएंगे। फिर होता क्या है, या घर टूटता है या दीन छूटता है, ये लिख लीजिए। वो जोड़ा खुश रहेगा तो इसी बात पे रहेगा, ना तुम छेड़ो ना मैं छेड़ूँ अपने आप को, लकुम दीनकुम वलिय दीन। तुम जुम्मे में जाओ मैं इतवार में जाऊंगा, तुम बुत को पूजो मैं उसको पूजूंगा, ठीक है फिर रहिए, लेकिन फिर दिलों का सुकून नहीं। फिर जो आगे नस्लें वो किस दीन पे होंगी, तो इन आयतों को हल्का ना समझिएगा। फरमाया कि अल्लाह ताला जन्नत की तरफ बुलाता है और अपनी बख्शिश की तरफ अपने हुक्म से बुलाता है। वो अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फरमा रहा है ताकि वो नसीहत हासिल करें। तो यहाँ ईमान से मुतल्लिक रुकू 26 में 2 आयात आई। पहली आयत 218, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह ताला की खातिर हिजरत करके बेज़मीन हो जाएगा वो सबसे बड़ी ज़मीन पाएगा। ये लिख लें, ये आगे भी सूरत निसा में आएगा। वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाही यजिद मुरागमन कसीरा, कोई हिजरत करते हुए डरे ना। बीबी हाजरा की हिजरत, ने हजरत इब्राहिम की हिजरत, कुर्बानियाँ याद रखिए। अल्लाह ने पूरी दुनिया को उस इस्लाम के नूर से रोशन कर दिया, एक घराने के सब्र से। आज अगर आप अपने शोहरों के साथ और शोहर अपनी बीवियों को साथ लेकर दीन के रस्तों में खप जाएं, ये अल्लाह के वादे हैं कि वो आपकी नस्लों की भी हिफाजत करेगा और दीन को भी दुनिया में फैलाएगा। फिर आयत 221, वला तनकिहुल मुशरिकाती हत्ता योमिन्ना, पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारनी है ताकि पाकीज़ा नस्लें पैदा हों। और मैंने तकाबुल कर करके दिखाए हुए हैं कि एक मुस्लिम और एक नॉन मुस्लिम की शादी इकट्ठी कर दें, रात से लेके फजर की नमाज तक 10 क्लैशेस एटलीस्ट दोनों में होंगे, इस्लामिकली भी और लीगली भी, जायज़ और नाजायज़ मियाँ और बीवी के हदूद के मामले से, नमाजों के पढ़ने और नमाजों के औकात से। तो घर कहाँ नहीं बनाए, बात बात पे तो दोनों लड़ेंगे एक दूसरे से, और नतीजा क्या होता है, 2-3 साल बाद एक दो बच्चा छोड़ के गोरी चली जाती है, दादी लेके फिरती है बेचारी पोतियाँ पोतों को। इतना दर्द है मेरे दिल में इस मौजू पे, बहुत साल पहले से मैं जानती हूँ घराना कैसे वो दादी बेचारी अपनी वो बच्चियों को हमारे पास मस्जिद में लाती थी, क्योंकि मियाँ बीवी में लहदगी हुई तो बच्चियाँ पकड़ के माँ को दे दी कि ये उधर चली गई तो ये होगा। और आज वो बच्चियाँ क्या हैं, अल्लाह उनके दीन ईमान की हिफाजत करे, कोई नहीं रहता। और जो मुल्कों के कानून है, सैटरडे उधर तो वीकडेज इधर, तो वीक, वो दोनों तरफ बच्चों का रिश्ता तो रखते हैं ना, फिर वो मियाँ बीवी लड़ते हैं तो माँ बाप के भी खिलाफ होते हैं, बस एक खिचड़ी पकी हुई है। अल्लाह ताला हमारी नस्लों की हिफाजत करे। तो लिखिए, जो अपने दीन से फिर जाए और कुफर की हालत में मर जाए तो उसके आमाल ज़ाया हो जाते हैं। आगे देखिए रुकू नंबर 27, 222 से 228, टॉपिक है ईला और इद्दत के अहकाम। अब यहाँ से तलाक का मौजू एक किस्म का शुरू होता है। तलाक में चूंकि इद्दत होती है और इद्दत का ताल्लुक पीरियड से है, क्योंकि कुछ लोग अभी सुनकर हैरान होंगे कि पीरियड्स की बात, मेंस्ट्रुएशन की बात, औरतों की बीमारी की बात कुरान में क्यों आ गई? इसलिए कि इससे आगे तलाक का तذکرہ है, और तलाक में जो इद्दत होती है, जो वेटिंग पीरियड होता है, वो इसी के साथ साथ चलता है। इस पे बहुत कुछ है, किसी को सुनना हो तो एक लेक्चर है निकाह से तलाक तक, उसको सुन ले, 1 घंटा कुछ मिनट का लेक्चर है, और उससे यकीन करें मैं कहती हूँ हर बच्ची को सुनना चाहिए, बच्चे को शादी से पहले, क्योंकि हमें शादी करते वक्त भी नहीं पता होता कि हमारी लिमिट्स क्या हैं। आइए देखते हैं। वयसअलूनक अनिल महीद, वो आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वो गंदगी है। हालत हैज में औरतों से अलग रहो और जब तक कि वो पाक ना हो जाए इनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वो पाक हो जाए तो इनके पास जाओ, जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है। अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ और अपने लिए नेक आमाल आगे भेजो, और अल्लाह से डरते रहा करो और जान रखो कि तुम इससे मिलने वाले हो, और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। यहाँ देखिए कि औरत को खेती कहा गया, कुछ औरतें बड़ी नाराज़ हैं इस पे, हम खेतियाँ क्यों बन गई? तो आपको क्या बनना है? फूल बनना है, चांद बनना है? देखिए ना, फिल्मों में, गानों में, ड्रामों में आमतौर पे औरत को चांद कहते हैं। किसी को मुश्किल होती है चांद को देखने के लिए? कुछ खर्च करना पड़ता है? जिधर मर्जी दिखे, जिसके मर्जी हो, दिल पे बिजलियां डालें, फूल है जी तो फूलों पे भंवरे आते हैं, उड़ उड़ के खुशबू लेके उड़ जाते हैं। कुरान ने औरत को खेती कह के मर्द को पहले किसान बनना सिखाया। शौहर बीवी के ताल्लुक के बीच में किसान वाले सारे मराहल है, मुबहम बात कर रही हूँ। कैसे वो पानी डालता है, फिर बीज डालता है, फिर वो बीज उगता है, फिर खेती तैयार होती है। शौहर बीवी के ताल्लुक से औलाद भी इसी तरह से मिलती है। अल्लाह ने मर्द को एक कवाम बनकर, एक औरत का जिम्मेदार बन के जीना सिखाया है। आज वैस ने औरत को खाली कर दिया, 4 किस्म के बच्चे लेके औरत फिर रही है, भमरा उड़ गया, उसको खुशबू चाहिए तो वो लेके चला गया, जिस दिन दिल भर गया निकाल गया। खेती तो आपकी कस्टडी में होती है, कोई परिंदा भी कहीं से आ जाता है तो किसान को फिक्र लगती है कि ये क्यों आ गया। तो ये मिजाज हमने फिल्मों से सीखा, हमारे यहाँ औरत और मर्द की शादी और तलाक फिल्मों से, शादी का तरीका भी फिल्मों से और तलाक का तरीका भी फिल्मों से, तलाक है तलाक है तलाक है। ऊपर बिजली गरजती है, फिर औरत को घर से बाहर निकाल देता है मर्द और कहता है अब तू जा जा, तुझे तलाक दी, और वो रो रही है मेरे सरकार मजाजी खुदा मैं बाहर कहाँ जाऊँगी, वो कहता है मैं तुम्हें नहीं रख सकता, तुम तो अब मेरे लिए गैर महरम हो ना, हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। वो इस्लाम जो मुर्गी काटते वक्त कहता है थोड़ा सा झटका देके छोड़ दो, उसका गंदा खून निकल जाए, उसको ज़रा ठंडा होने दो। वो एक औरत जो अभी मिसिज है, टुप टुप करती, गाड़ी की चाबी, टेस्ला की गाड़ी, प्रादा का पर्स, फलां पकड़ के, जिस मर्द की वो बेगम है, सिर्फ मर्द के मुंह से 3 लफ्ज़ निकले तलाक तलाक तलाक, तो वो बेवा हो गई या बीवी भी ना रही तो क्या हो गई? क्यों हमें नहीं पता ये बातें? शादी की तैयारियां 6-6 महीने करते हो, कोई एक छोटा सा इन आयतों का कोर्स तो करके करा लो कि तुम्हारी शादी होती क्या। फिर उस उम्मत की नस्लें आज वो गुमशुदा भेड़ों की तरह फिर रही हैं, तो किसका कसूर है? अल्लाह हमारा ये दर्द कबूल करे, और हमें अपने बच्ची बच्चियों को उनकी शादी से पहले कम से कम कुरान पूरा तर्जमे के साथ पढ़ने वाले माँ बाप में शामिल कर दे फरमाया। और अल्लाह ताला को अपनी कस्मों का इस तरह निशाना ना बनाओ कि भलाई और परहेजगारी और लोगों के दरमियान की इसलाह को छोड़ बैठो, और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी इन कस्मों पर ना पकड़ेगा जो पुख्ता ना हो, हाँ इसकी पकड़ इस चीज़ पर है जो तुम्हारे दिलों का फेल हो। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बर्दबार है। जो लोग अपनी बीवियों से ताल्लुक न रखने की कस्में खाएं, इनके लिए 4 महीने की मुद्दत है, फिर अगर वो लौट आए तो अल्लाह ताला भी बख्शने वाला और मेहरबान है, और अगर तलाक का ही कसद कर लें तो अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। तलाक वाली औरतें अपने आप को 3 हैज तक रोके रखें, इन्हें हलाल नहीं कि अल्लाह ने इनके रहम में जो पैदा किया हो इसे छुपाएं। अगर इन्हें अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान हो, इनके खावंद इस मुद्दत में इन्हें लौटा देने के पूरे पूरे हकदार हैं। अगर इनका इरादा इस्लाह का हो और औरतों को भी वैसे ही हक हैं जैसे इन पर मर्दों के हैं। हाँ, मर्दों को औरतों पर फजीलत है, अल्लाह ताला गालिब है और हिकमत वाला है। क्या पता चला कि खास शोहर बीवी के ताल्लुकात हैं और बात हो रही है ईमान पे। ईमान ईमान, इस पूरे रुकू में दो आयतें ईमान से मुतल्लिक हैं। रुकू नंबर 27 में ईमान से मुतल्लिक आयात, 223 निसाओकुम हर्सुल्लकुम फातुहर्सकुम में एंड पे क्या है, वबशिरिल मोमिनीन। क्या पता चला कि औरत की सबसे कीमती चीज़ औलाद और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तरबियत औलाद है। औरत सब कुर्बान कर देती है औलाद की खातिर, तो उन औलादों की अच्छी तरबियत भी करनी है। दूसरी है 228 अलबकरा, वलमुतल्लक़ात यतरब्बसन बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू इन कुन्न युमिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर पे आयत पूरी हो रही है। क्या पता चला कि ख़वातीन के मामलात में औरत की दयानतदारी ईमान का हिस्सा है, यानी जब लड़कियां ढूंढने जाएं तो ईमान वाली ढूंढें। आप देखेंगे कि जितना बच्चियों में बहुओं में ईमान होगा वो ईमान नस्लों तक मुंतकिल होगा। और ये भी चीज़ आप नोट कर लीजिए कि इबादात से जो ईमान मिलता है, तकवा मिलता है, वो मुआमलात में झलकता है। जितना शौहर अल्लाह से डरेगा उतना सब्र करेगा, जितनी बीवी अल्लाह से डरेगी उतना सब्र करेगी, और बाकी भी रिश्तों में यही असूल है। क्या सीखा कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। शौहर के लिए इसकी बीवी किसान की खेती की तरह कीमती होती है क्योंकि उससे फसल मिलने वाली है। इसी तरह कस्मों के बारे में एहतियात से काम लेना चाहिए क्योंकि तलाक भी एक कसम ही है असल में जो मर्द खा लेता है। और इसमें एक जनरल रूल लिख लीजिए, औरतों के हकूक भी वैसे ही हैं जैसे के मर्दों के हकूक हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर इसके बाद रुकू नंबर 28 शुरू हो रहा है, तलाक के अहकामात हैं 229 से 231। अत्तलाक मर्रतान फइमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिएहसान। ये तलाकें दो मर्तबा हैं, फिर या तो अच्छाई से रोकना या उम्दगी के साथ छोड़ देना है। और तुम्हें हलाल नहीं कि तुमने इन्हें जो दिया है इनमें से कुछ भी लो। हाँ, ये और बात है कि दोनों को अल्लाह की हदें कायम ना रख सकने का खौफ हो, इसलिए अगर तुम्हें डर हो क्या कि ये दोनों अल्लाह की हदें कायम ना रख सकेंगे, तो औरत रिहाई पाने के लिए कुछ दे डाले, इसमें दोनों पर गुनाह नहीं। ये अल्लाह की हदूद हैं, खबरदार इनसे आगे नहीं जाना, और जो लोग अल्लाह की हदों से तजावुज़ कर जाएं वो जालिम हैं। फिर अगर इसको तीसरी बार तलाक दे दे तो अब इसके लिए हलाल नहीं जब तक कि वो औरत इसके सिवा किसी दूसरे से निकाह ना कर ले। फिर अगर वो भी तलाक दे दे तो इन दोनों को मेलजोल कर लेने में कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि वो जान लें कि अल्लाह की हदूद को कायम रख सकेंगे। ये अल्लाह की हदूद हैं जिन्हें वो जानने वालों के लिए बयान फरमा रहा है। जब तुम औरतों को तलाक तौर व अपनी इद्दत ख़त्म करने पर आएं तो अब इन्हें अच्छी तरह बसाओ या भलाई के साथ अलग कर दो, और इन्हें तकलीफ़ पहुंचाने की गरज से जुल्म और ज्यादती करने के लिए ना रोको। जो शख्स ऐसा करे इसने अपनी जान पे जुल्म किया। तुम अल्लाह के अहकाम को हंसी खेल ना बनाओ। ऐसे नहीं लग रहा जैसे माँ बाप अपनी बेटी देते वक्त नसीहतें करते हैं, बेटा हमारी बेटी को खुश रखना, बड़े लाडों से पाली हुई है, ये अकेली बेटी है, ये इतने भाइयों की बहन है। क्या कोई माँ बाप अपनी बेटी का इतना दिफा करें जितना इन आयतों में अल्लाह ताला कुरान में कर रहा है। ज़रूरत है इस बात की कि हमने इसको समझ के पढ़ना है इंशाल्लाह, तो अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। आपने देखा तलाक का कितना सिस्टमेटिक तरीका है, इस पे वो लेक्चर भी सुनिए। और मैं यहाँ बता दूँ, पिछले 2 सालों से दौरे कुरान में मैं इन आयतों पे पूरा फ्लो चार्ट्स के साथ वो तरीका डलवा रही हूँ जिसको आप कह सकते हैं कि इस्लामिकली तलाक देने का तरीका क्या होगा। उसको खोलकर सुन लें तो इस तलाक और निकाह के मौजू में हमें क्या पता चला। वो लोग जो खुद पर जुल्म करते हैं वो असल में अल्लाह की हदूद को तोड़ते हैं, और अल्लाह ताला की आयात और इसके अहकाम का मजाक बहुत बड़ा गुनाह है। आगे ये मौजू पूरा होगा रुकू नंबर 29 29 232 से 235, बेवा और तलाक याफ्ता औरतों के मसाइल। आपको ये कुरान कैसी बुक लग रहा है? क्या औरतों के मसाइल की बुक नहीं है? किसी वेस्टर्न शख्स ने कहा था कि अगर मुझे यकीन ना होता कि ये कुरान एक मोहम्मद ने लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी ये बात भी वैसे गलत है, तो मैं कहता कि इस कुरान को लिखने वाली कोई औरत है। कुरान व्यूमन राइट्स इस तरह देता है, और हम पता नहीं कौन से लिप्स से आकर औरतों के हकूक की बातें करते कराते नजर आते हैं। देखिए, वइज़ा तल्लक़तुमुन्निसा, और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो इन्हें इनके खाविंदों से निकाह करने से न रोको, जबकि वो आपस में दस्तूर के मुताबिक रजामंद हों। ये नसीहत इन्हें की जाती है जिन्हें तुम में से अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर यकीन और ईमान हो। इसमें तुम्हारी बेहतरीन सफाई और पाकीज़गी है, अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। माएँ अपनी औलाद को 2 साल कामिल दूध पिलाएं, जिनका इरादा दूध पिलाने की मुद्दत बिल्कुल पूरी करने का हो, और जिनके बच्चे हैं इनके ज़िम्मे इनका रोटी कपड़ा है जो दस्तूर के मुताबिक हो। हर शख्स को उतनी ही तकलीफ़ दी जाती है जितनी उसकी ताकत हो। देखिए, कभी तलाक की सूरत में बच्चे भी होते हैं, कुरान ने उनका भी तरीका बता दिया कि मियाँ बीवी अलग हो रहे हैं लेकिन बच्चे के साथ क्या मामला होगा। और इसमें औरत के अपने बच्चे को दूध पिलाने की बात भी है, जो कि आज भी प्रूवन है कि जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं वो खुद भी सेहतमंद रहती हैं और उनके बच्चे भी। माँ को इस बच्चे की वजह से या बाप को इसकी औलाद की वजह से कोई ज़र्र ना पहुँचाया जाए, वारिस पर भी इस जैसी जिम्मेदारी है। फिर अगर दोनों यानी माँ बाप अपनी रजामंदी और बाहमी मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं, और अगर तुम्हारा इरादा अपनी औलाद को दूध पिलवाने का हो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, यानी किसी और औरत से पिलवाना हो, जबकि तुम इनको दस्तूर के मुताबिक जो देना हो वो इनके हवाले कर दो। अल्लाह ताला से डरते रहो और जानते रहो कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को देखभाल रहा है। अब यहाँ से बेवा औरत, आगे तलाक की बातें थी ना, अब आगे बेवगी की इद्दत या उनके मसाइल है। तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और बीवियाँ छोड़ जाएं, वो औरतें अपने आप को 4 महीने और 10 दिन इद्दत में रखें, फिर जब मुद्दत ख़त्म कर लें तो जो अच्छाई के साथ वो अपने लिए करें, इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, और अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल से खबरदार है। तुम पर इसमें भी कोई गुनाह नहीं कि तुम इशारतन इन औरतों से निकाह की बात करो या अपने दिल में पोशीदा इरादा करो। अल्लाह ताला को इल्म है कि तुम ज़रूर इनसे जिक्र करोगे लेकिन तुम इनसे पोशीदा वादे ना कर लो। हाँ, ये और बात है कि तुम भली बात बोला करो और अपने निकाह जब तक कि इद्दत ख़त्म ना हो जाए पुख्ता ना करो। जान रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों की बातों का भी इल्म रखता है, तुम इससे खौफ खाते रहा करो, और ये भी जान रखो कि अल्लाह ताला बख्शिश और हेल्म वाला है। देखिए, औरत की इद्दत के दौरान निकाह का इशू कुरान में है। जिन्होंने कुरान ही नहीं पढ़ा वो क्या करेंगे? जो शोशे फैलते हैं उनको ज़रा सामने रखिए कि आज पूरी उम्मत से कुछ सारी कुर्सियों से हटाकर पहले कुरान नहीं पढ़ाना चाहिए। तुम वोट लेने नहीं खड़े हो सकते, पहले कुरान पढ़ो। तुम सियासत में नहीं जा सकते, पहले कुरान पढ़ के आओ, फिर देखो क्या हो। मुल्क भी सीधे हो जाए और हुक्मरान और अवाम, तो अल्लाह ही उसको सीधा करे। तो क्या है ईमान की आयतें? इसमें से एक आयत रकू 29 में, 232 बकरा, ज़ालिका युअज़ु बिही मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। तलाक शुदा औरत की निकाह में रुकावट ना डाली जाए, ये तो नासूर है हमारे माशरे का। अल्लाह हिदायत दे हमें। क्या सीखा है? रज़ात की मुद्दत 2 साल है, चाहे लड़का हो या लड़की, बेटा या बेटी, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 2 साल है। बेवा औरत की इद्दत 4 महीने 10 माह है। अब ये जो तलाक है ना, उसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। तलाक बाइन या रजई, यानी वो तलाक जिसके बाद रजू किया जा सके, इसके बाद औरत को अपने शौहर के पास वापस जाने से नहीं रोक सकते। आई रिक्वेस्ट कि आप सारे वो मौजूद डिटेल से सुनिए, मुझे पता है बड़ा आपके दिमागों में सवालों का एक गट्ठड़ होगा, तो आप इस मौजू को लिख लें अपने पास, बाद में सुनिएगा, और फिर उसके बाद कोई बात समझ ना आई तो इंशाल्लाह उसको पूछ लीजिएगा। फिर क्या सीखा? कि तलाक की सूरत में बच्चे की वजह से ना माँ को तकलीफ पहुँचाई जाए ना बाप को, यानी आपस में अच्छे तरीके से तकवा के साथ समझौता कर लिया जाए। बेवा औरत की इद्दत के दौरान उस औरत से निकाह का इशारा किया जा सकता है लेकिन पैगाम नहीं पहुँचाया जा सकता, यानी इद्दत के दौरान निकाह नहीं हो सकता, ये गुनाह होगा। रुकू नंबर 30, मेहर और रुख्सती से पहले होने वाली तलाक के अहकाम, आयत 236 से 242। व इज़ा तल्लक़तुमुन्निसा फबलग़ना अजलहुन्न फ़ला तअदुलूहुन्न। तर्जमा देखिएगा, अगर तुम औरतों को बगैर हाथ लगाए और बगैर मेहर मुकरर किए तलाक दे दो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, हाँ इन्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा दो। खुशहाल यानी खाता पीता अच्छा मर्द कमाने वाला अपने अंदाज से, और तंग दस्त अपनी ताकत के मुताबिक दस्तूर के मुताबिक अच्छा फ़ायदा दे। भलाई करने वालों पर ये लाजिम है। और अगर तुम औरतों को इससे पहले तलाक दे दो कि तुमने इनको हाथ लगाया हो और तुमने इन पर मेहर भी मुकर्रर कर दिया हो तो मुकर्ररा मेहर का आधा मेहर दे दो। ये और बात है कि वो खुद माफ़ कर दें या वो शख्स माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरह है। तुम्हारा माफ़ कर देना तकवा से बहुत नज़दीक है और आपस की फजीलत और बुजुर्गी को फरामोश ना करो। यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देख रहा है। यानी कभी कभी रुखसती से पहले भी तलाक होती है, निकाह हुआ तो टूट गया, उसके मसाइल हैं। और आप देखिए निकाह तलाक के मसाइल में फिक्र किसकी है, नमाज़ों की। हाफिज़ुल सलावात वस्सलातिल वुस्ता। यहाँ देखिए कि उम्मत वसत और यहाँ सलात वुस्ता, इसका एक रब जोड़ लीजिए। नमाज़ों की हिफाजत करो, बिलखसूस दरमियानी नमाज की यानी असर, और अल्लाह ताला के लिए बादब खड़े रहो। अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल ही सही या सवार ही सही। हाँ जब अमन हो जाए तो अल्लाह का जिक्र करो, जिस तरह किसने तुम्हें इस बात की तालीम दी जिसे तुम नहीं जानते थे। अमूमन नमाजें ज़ाया होती हैं और दोनों पार्टियां एक दूसरे से समझौते कर कर आ रही होती हैं। और आगे बेवा औरत के हकूक, जो लोग तुम में से फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो वसीयत कर जाएं कि इनकी बीवियां साल भर तक फ़ायदा उठाएं, इन्हें कोई ना निकाले, यह आयत अब मनसूख है। हाँ अगर वो खुद निकल जाएं तो तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं, जो वो अपने लिए अच्छाई करें, अल्लाह ताला गालिब और हकीम है। तलाक वालियों को अच्छी तरह फ़ायदा देना परहेजगारों पर लाजिम है, और अल्लाह ताला इसी तरह तुम पर अपनी आयतें जाहिर फरमा रहा है ताकि तुम समझो। तो यहाँ पे तलाक, इद्दत और ये सारा मौजू पूरा हुआ। अब पारे का एंड है। गज़वे बदर करीब थी, अल्लाह ने माजी के वाकयात दो सुनाकर सहाबा के दिल से जिहाद की रग़बत और मौत के खौफ को निकाल दिया। रुकू नंबर 31, 31, 243 से 248, बनी इसराइल और जालूत का वाक़या। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफ, क्या तुमने नहीं देखा उनको जो हजारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए। अल्लाह ने इन्हें फरमाया मर जाओ, फिर इन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह तला लोगों पर बड़ा फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग ना शुक्र हैं। इसको सोच लें जरा, कहीं मैं ना शुक्री तो नहीं। अल्लाह की राह में जिहाद करो और जान लो कि अल्लाह तला सुनता भी है और जानता भी है। ऐसा भी कोई है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे, खामोशी, क्योंकि यह आयत आगे दोबारा आनी है। मन दल्लज़ी युक्रिदुल्लाह कर्दन हसना, बस अल्लाह इसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर अता फरमाए। अल्लाह ही तंगी और कुशादगी करता है और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। ये आयतें सहाबा के दिलों पे पड़ती थी, हमारे तो कान सुनते हैं, हमें समझ भी नहीं आ रहा कि अल्लाह ने हमसे क्या मांगा है और क्या कहा है। क्या आपने हज़रत मूसा के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा कि मुमकिन है जिहाद फ़र्ज़ हो जाने के बाद तुम जिहाद ना करो। उन्होंने कहा भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों ना करेंगे, हम तो अपने घरों से उजाड़े गए और बच्चों से दूर कर दिए गए। फिर जब इन पर जिहाद फ़र्ज़ हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए, और अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है। और इन्हें इनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है, तो कहने लगे भला इसकी हम पर कैसे हुकूमत हो सकती है, इससे तो बहुत ज्यादा हकदार बादशाहत के हम हैं, इसको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई। नबी ने फरमाया सुनो अल्लाह ताला इसी को तुम पर चुन रहा है, यानी बरगजीदा किया उसको, और उसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी भी अता फरमाई। बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे, और अल्लाह कुशादगी वाला और इल्म वाला है। इनके नबी ने फिर कहा कि इसकी बादशाहत की जाहरी निशानी ये है, तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमी है और आले मूसा और आले हारून का बकिया तरका है, फरिश्ते इसे उठाकर लाएंगे। यकीन ये तो तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमान वाले हो। ईमान ईमान ईमान, फील कर रहे हो आप, कुरान का 2/3, 2/3 हिस्सा ईमान से मुतल्लिक है, और हम इसी को छोड़कर मसाइल में उलझे रहते हैं, फिकी बातों में परेशान हैं। कुरान फिक को नहीं छेड़ता, आपने आज 2-3 दिनों में कोई फिकी बात नहीं सुनी होगी। तो इस रुकू में 31 रुकू में ईमान से मुतल्लिक एक आयत, 248 बकरा, इन नफीजा लिकल आयत अल्लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। क्या पता चला कि अल्लाह के नज़दीक माल से ज़्यादा इल्म की अहमियत है। फिर इससे सीखा कि अल्लाह ताला लोगों पर फजल करता है, लेकिन अक्सर लोग इसका शुक्र अदा नहीं करते। जो अल्लाह को कर्ज़े हसना देगा अल्लाह इसको दुगना अता फरमाएगा। बहुत से लोग सिर्फ दावे करते हैं और जब काम का वक्त आता है तो पीछे हो जाते हैं। अल्लाह हमें उनमें ना करे। अल्लाह ताला जिसको चाहे बादशाहत अता फरमाए और उसके बाद फिर आखिरी चंद आयते रुकू नंबर 32 है, 249 से 52 रुकू अगले पारे में पूरा होगा। हम चाहें तो यहाँ भी रुक जाएं, लेकिन हम इन आयतों का तर्जमा पढ़ लेते हैं। टॉपिक लिखिए हजरत दाऊद पर अल्लाह ताला का इनाम। फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूद قال إن الله مبتليكم بنهر, जब हजरत तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा सुनो अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है, जिसने इसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं और जो इसे ना चखे वो मेरा है। हाँ ये और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले ले, लेकिन सिवाय चंद के बाकी सब ने पानी पी लिया। ये दुनिया की नहर थी। लोग दुनिया के पीछे पड़ते हैं ना तो थोड़े पे नहीं रहते। हज़रत तालूत मोमिनीन समेत जब नहर से गुजर गए तो वो लोग कहने लगे आज तो हमें ताकत ही नहीं कि जालूत और उसके लश्करों से लड़े। लेकिन अल्लाह ताला की मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा कई दफ़ा ऐसा हुआ कि छोटी और थोड़ी सी जमात बड़ी और बहुत सी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती है। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे इंशाल्लाह। मुसलमान हथियारों से नहीं लड़ता, अपने ईमान के हथियार से लड़ता है और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जब इनका तालूत और इसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी, आप भी मांगे साथ, रब्बना फ़रिग़ अलैना सब्रं वसब्बित अक़दामना वंसुरना लिल क़ौमिल काफ़िरीन। ए हमारे परवरदिगार हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और कुफार कौम पर हमारी मदद कर। चुनाचे अल्लाह के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को शिकस्त दे दी और हजरत दाऊद के हाथों जालूत कत्ल हुआ और अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को मुमलिकतो हिकमत और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फरमाया। अगर अल्लाह ताला बास लोगों को बास से दफा न करता तो ज़मीन में फसाद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बड़ा फजलो करम करने वाला है। ये अल्लाह की आयात है जिन्हें हम हक्कानियत के साथ आप पर पढ़ते हैं। वही नकल मिनल मुरसलीन, और यकीनन आप रसूलों में से हैं। तो ये था पारा नंबर 2। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान से मुतल्लिक आयत रुकू 32 में एक आयत है, 249 बकरा। फलम्मा जा वज़हू हुआ वल्लसीना मनु माहू कालू ला ताकत लना अल्यौम। क्या पता चला दुनिया की नहर से ज़्यादा पी लेने वाले अल्लाह की राह के मुजाहदे नहीं कर पाते। ये है आज की उम्मत वसत जो अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी कर पा रही, उसका मसला। दुनिया लेते लेते हिलकान है, हल में मजीद अल्हाकुम अत्तकासुर अल्हाकुम अत्तकासुर। उनको भी गुस्सा आता होगा दीनदारों पे कि यार हर वक्त ये हमें बुलाते रहते हैं, ये कर रो, ये इधर जाओ उधर जाओ, इनको हमारी मजबूरियां नहीं पता। सही कहते हैं, आप एक दफा दुनिया में एक कदम रखे दूसरा आपका खुद ही गिरेगा, और आप जितने बिजी होंगे उतना तो शायद कोई आलमे दीन भी ना बिजी हो। तो क्या पता चला कि जिन लोगों का ईमान ज्यादा होता है वो मुश्किल हालात में अकेले खड़े हो जाते हैं और किसी भी हालत में हिम्मत नहीं हारते, किसी किस्म के हालात में उनकी हिम्मत नहीं टूटती और अल्लाह के दीन के लिए अपनी जान लगाने को भी तैयार हो जाते हैं। फिर इससे हमें एक और मैसेज मिला कि अल्लाह ताला बास लोगों को बास के जरिए हटा देता है ताकि दुनिया में अमन कायम हो। हर हाल में अल्लाह की बात को मानना और अल्लाह और अपने दरमियान आने वाली हर चीज़ को ज़िंदगी से निकाल देना, यही उम्मत वसत को मैसेज था। हमने ईमान की शाखों में दो शाखें पहले पारे के साथ की, दो शाखें आज हैं, और ब्रांचेस ऑफ ईमान में तीसरी चीज़ जो आती है हदीसों में, इंशाल्लाह इसकी सारी हदीसें भी आप बाद में सुनेंगे, फरिश्तों पर ईमान। हमारा ईमान कंप्लीट नहीं है जब तक हम फरिश्तों के बारे में सही ना सोचें। क्या नंबर एक, फरिश्ते नूर से बने हैं, फरिश्ते हर वक्त अल्लाह की इबादत और इताअत में मसरूफ़ हैं, दुआ करें अल्लाह हमें भी ऐसा करते। तीसरी बात है फरिश्ते सुस्ती नहीं करते और नाफरमानी नहीं करते, अल्लाह हमारी सुस्तियाँ भी दूर कर दे। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़लून मा युमरून, सूरह तहरीम के आयत 6 में आता है। यानी वो फरिश्ते जो कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म दिया गया उसको बजा लाते हैं। फरिश्तों की खसूसियात क्या हैं, मुख्तलिफ जिम्मेदारियों में मसरूफ़ हैं, यानी हर एक को डेजिग्नेट किया गया है मुख्तलिफ कामों के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन सबकी क्लियर हो तो झगड़े नहीं होते, दिल खट्टे नहीं होते। फरिश्ते अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, ये आपको पूरे अकीदे के बयान पढ़ा रही हूँ, क्योंकि कई लोगों ने फरिश्तों के लिए भी बहुत मन घड़त बातें की। फरिश्ते हर चीज़ का हिसाब लिख रहे हैं और फरिश्तों का रूहानी और नूरानी वजूद हमारी अक्ल से बालातर है, हम नहीं जान सकते। दुनिया में बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बिन देखे मान लेते हैं, फरिश्तों का मादी वजूद नहीं है, लेकिन हम इनके वजूद पर ईमान लाते हैं क्योंकि ये यूमिनूना बिल गैब में आते हैं। फिर फरिश्तों की कुछ और खसूसियात जिस पे ईमान लाना है। इनकी तख्लीक का मकसद इत्तबा और इताअत है। इनके पास चॉइस नहीं है, फ्री विल नहीं है। हर किस्म के ऐब और कमज़ोरी से पाक है। जैसे इंसानों में कमज़ोरियाँ आ सकती हैं, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, फरिश्तों में ऐसा नहीं है। तस्बीह व तहलील में मसरूफ़ रहते हैं और इनकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। फरिश्तों की भी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, कुछ मुकर्रब हैं, कुछ किरामन कातबीन हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल इंसानी शक्ल की सूरत में आते थे। किस सहाबी की शक्ल में? हज़रत दाहिया कल्बी। मरियम अलैहि सलाम के पास इंसानी शक्ल में पैगाम लेकर आए थे, जब हज़रत ईसा की खबर दी थी। बशरी शक्ल इख्तियार करने से उनकी नौरानी हैसियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सूरत अंबिया 26 में आता है, बल इबादुम मुकरमून, वो तो बंदे हैं जिनको इज्जत दी गई, यानी अब्द हैं, आबिद से ज़्यादा अब्द है। तकरीबन 1,24,000 नबी और रसूल भेजे गए। फरिश्तों में चार बड़े फरिश्ते हैं, जिब्राइल, इज़राइल, इसराफील और मीकाईल, यानी ये चार रसूल हैं इनमें। और इंसान अल्लाह का खलीफा है। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि बशर थे, इनको अब्द फरमाया गया। लिहाजा किसी ने कहा कि फरिश्ता कहने से मेरी तहकीर होती है, मैं मस्जूदे मलाइक हूँ, मुझे इंसान रहने दो। यानी जो लोग कहते हैं ना कि ये तो फरिश्ता सिफत है, नहीं, वो कहते हैं ना कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर लगती है इसमें मेहनत ज़्यादा। तो फरिश्तों के बारे में क्लैरिटी के साथ अपनी इन चीज़ों को सामने रखें। चौथी शाख, कुरान मजीद और सारी किताबों पे ईमान लाना है। इसमें कोई नई बात नहीं कि जो आप समझना चाहें, लेकिन बस इतना दुआ कर लीजिए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में इस ईमान को पुख्ता कर दे। हमारा आज तक तो उम्मत मुस्लिमा का जो गिरोह, जो मेरी आपकी एज के हैं, उनका तो कुरान पे ईमान है, शुक्र है। पढ़े ना पढ़े, लेकिन हमारी नस्लों के ईमान शक में हैं, खतरे में। तो कुरान पाक के बारे में चंद बातें। अब कुरान मजीद, पिछली किताबों पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। क्या हैं ये किताबें जो रुश्दो हिदायत और फलाह के लिए अम्बिया कराम को दी गई? हिदायत और रहनुमाई के लिए आसमानी कुतब हैं ये। ज़िंदगी गुजारने के असूल और जवाबित सिखाती हैं, और मुख्तलिफ़ अवकात में मुख्तलिफ़ किताबें और सहीफ़े दिए गए थे। सूरह बकरा 2:13, कानन नास उम्मतम वाहिदा से भी यही बात पता चलती है कि जब भी लोगों में इख्तलाफ आया, अल्लाह ने किसी नबी के ज़रिए उस इख्तलाफ को दूर किया। तकरीबन 400 किताबें नाजिल हुई, ये नई बात होगी आपके लिए। 400 आसमानी किताबें नाजिल हुई, वो सारी के सारी अल्लाह की तरफ से मानी जाएंगी, हिदायत का सरचश्मा थी। मानवी तहरीफ उसमें नहीं की जाएगी और लफ्जी तहरीफ भी नहीं की जाएगी, यानी अल्लाह की किताब में कोई तब्दीली नहीं आती। क्योंकि सूरह हिजर की आयत 9 में आता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया, इसलिए हमें बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए। आप इस पे अमल कीजिए और बाकी काम अल्लाह पे डाल दें। मुकम्मल और जामे तरीन किताब है, कोई तब्दीली नहीं हुई, क़्यामत तक के लिए महफूज है और तमाम इंसानों के लिए नाजिल की गई। सूरत निसा 136 बता रही है कि जो इस किताब को छोड़कर इधर उधर होगा, वो क्या होगा? फ़कद दल्ल दलालम बईदा। और अल्लाह की इस किताब के हकूक आप पीछे सुन चुके हैं, पारा नंबर 1 के एंड पे, 5 राइट्स ऑफ द कुरान। फ़ामिनु बिल्लाही व रसूलिही व नूर अल्लज़ी अनज़लना। पहली किताबों की तस्दीक करता है कुरान, ये बरकत अली किताब है। सूरत अनाम 105, इस पर ईमान लाएं और इसकी पैरवी करें, ये इसका तकाजा है, और इसके मुताबिक फैसले किए जाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुरान 5 चीज़ों के मुतल्लिक नाजिल हुआ, 5 उमूर, 5 टॉपिक्स हैं। नंबर 1, हलाल और हराम, क्या हलाल है क्या हराम है। मुहकम और मुतशाबे और इमसाल, हुक्म वाली आयतें, शुबे वाली आयतें और मिसाली आयतें। तुम हलाल को हलाल और हराम को हराम समझो, मुहकम पर अमल करो और मुतशाबे पर ईमान लाओ, और इमसाल पिछली कौमों के जो वाक़यात हैं उनसे इबरत लो। ये मिशकातुल मसाबीह की रिवायत है। कुरान की फजीलत हमारे कहने की मुहताज तो नहीं, लेकिन सिर्फ आपकी खुशी की खातिर। वर्चूज़ ऑफ द कुरान में क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुरान मजीद पढ़ने वाले से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत में मंजिल ब मंजिल ऊपर चढ़ता जा, और यूं तरतील से पढ़ जैसे तू दुनिया में तरतील किया करता था, तेरा ठिकाना जन्नत में वहाँ होगा जहाँ तो आखिरी आयत तिलावत करेगा। अल्लाह करे कि हमारे ये दो पारे हमारे लिए जन्नत के दर्जों को बुलंद करने वाले हो। और इन हदीसों को आप थकन के बावजूद सुन रहे हैं, क्योंकि अगली हदीस में जेवरात की बात आ रही है, सुन लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़्यामत के दिन साहिब कुरान, यानी जो कुरान पढ़ता भी और उस पर अमल भी करता है, आएगा तो कुरान कहेगा ए रब हल्ली ही, इसको जेवर पहना, तो साहिब कुरान को इज्जत का ताज पहनाया जाएगा, ताजुल किरामा। कुरान फिर कहेगा यार अब जिद हो, इसको और बढ़ा, इसके ऊपर असली लिबास पहना, तो उसे इज्जत और बुजुर्गी का लिबास पहनाया जाएगा, हुल्ला ड्रेसअप किया जाएगा। फिर कुरान कहेगा मेरे मौला अब इससे राजी हो जा, अल्लाह करे हमारा कुरान भी यही कहे, इसकी सारी खताएं माफ कर दे, तो अल्लाह ताला उससे राजी हो जाएगा और उससे कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा और जन्नत के जीने चढ़ता जा और हर आयत के बदले इसकी नेकी बढ़ती जाएगी। ये तिरमिज़ी और अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह करे हम सब के साथ यही हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, कुरान मजीद का माहिर मुअज्ज़ज़ और मोहतरम फरिश्तों और मुअज़्ज़म और मुकर्रम अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ होगा, और वो शख्स जो कुरान मजीद पढ़ता है लेकिन अटकता है, यानी ज़ुबान मोटी है या कुन ज़हन है, तो उसको तो दुगना अजर मिलेगा। तो ये मेरे जैसे बंदों के लिए था, अल्लाह मेरी कमियाँ दूर करे। आखिर में आज के इस पूरे मौजू की नज़र एक शेर, अपनी मिल्लत पर क्यास अक़वामे मग़रिब से ना कर, ख़ास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी, तो कव्वा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, मुसलमान को किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं। आज की दुआ मोहब्बत से पढ़ते हुए दोहराइएगा, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकती व रूह, ये सही मुस्लिम की रिवायत है और हदीस नंबर 1091 है। बहुत ही पाकीज़ा नहायत मुकद्दस फरिश्तों और रूहे जिब्राइल का रब, सुबह शाम की दुआओं में भी आपको ये दुआ मिल जाती है, सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वाले